ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آیت نمبر 130 سے 141 سورۃ البقرہ لیسن آیت نمبر 132-141 پہلے تھوڑا سا سبق کا خلاصہ دے دیتی ہوں کہ پچھلے سبق میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈکلریشن تھی کہ جب بھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کسی چیز میں آزمایا کسی بات کے کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کام کو فوراً کیا نہ سوچا نہ پوچھا نہ بتایا نہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑنے کے باوجود یہود اس بات کو بے وقوفی کا طریقہ کہتے تھے کہ اللہ کی ہر بات مانی جائے جملہ غور سے سنیے گا اور لکھنے کی کوشش کیجیے گا یہود کا خیال تھا کہ اللہ کی باتیں ماننی چاہیے، پر ساری کیوں مانے؟ یہ کیا بات ہے، ہر بات اب اس کی مانے؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جیسے آپ کے بچے کبھی آپ کو یہ کہہ دیں نا کہ ماما کیا یہ ضروری ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں؟ ہاں ویسے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ میری ہر بات مانیں۔ تو اس کا جواب آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ دوسرا، ہمیں پچھلے سبق کے ساتھ اگر اس سبق کا ربط دیکھنا ہے، پچھلے سبق میں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کو دنیا میں امام بناؤں گا، تو انہوں نے فوراً پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی امامت کا منصب ملے گا؟ آج کے اس سبق میں اصل میں تو اولاد کی باتیں ہیں کہ کون سے مسلمان ہیں کہ موت کے وقت بستر مرگ پہ وہ سکون کی موت سوتے ہیں، کن کو مرتے وقت کس بات کی فکر ہے۔ یعنی آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جب ماں باپ کی اپنی زندگی اللہ رخی ہوتی ہے تو ان کو موت کے وقت زیادہ فکر نہیں ہوتا، بلکہ بچے وہی بات کہتے اور کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ساری زندگی انہوں نے ماں باپ کو کرتے دیکھا۔ تیسری چیز، پچھلے سبق میں ہم نے پچھلا اور اس سے پچھلے سبق میں پڑھی تھی فرقہ واریت، مختلف گروہوں کی بات تھی، کل بھی تھی، پرسوں بھی تھی، لاسٹ ٹو لیسنز میں تھی۔ آج ہمیں اس کا فائنل ورژن دیا جائے گا کہ پھر کیا کرو، کس رنگ کو اپنے اوپر اپنائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پارے کے اندر بنی اسرائیل کی جتنی باتیں ہم نے پڑھی، اب یہ اس کے اوپر ایک قسم کی مہر ثبت کی جا رہی ہے کہ اللہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو چننے کے بعد جب اس کے منصب سے ہٹا دے تو نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ فیورٹزم کی وجہ سے کسی کو ہٹا کر پھر اس کی جگہ دوسرے کو لے آتے ہیں، بلکہ لوگ اپنے رویوں سے دکھاتے ہیں کہ آپ کا پہلا چناؤ غلط تھا۔ اللہ کا چناؤ غلط کبھی نہیں ہوا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کل بنی اسرائیل کو چنا تھا نا تو وہ ٹھیک تھا چناؤ، لیکن بعد میں ان کے اندر جب حب دنیا آ گئی تو نقصان کیا ہوا کہ پھر وہ اس چناؤ کے قابل نہ رہے۔ بعض دفعہ ماں باپ بہت اچھی زندگیاں بسر کر جاتے ہیں لیکن اولادیں اس کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ تو آئیے ذرا ہم آج کے سبق میں سے اپنے لیے عمل کے نقطے ڈھونڈیں۔ طریقہ وہی ہوگا کہ ہم پڑھیں گے باتیں ان کی، لیکن محاسبہ ہمارا اپنا ہوگا۔ آیت نمبر 130، پھر اس میں انشاءاللہ آپ کو میں پیچھے والی آیت کے ساتھ بھی جوڑوں گی بیچ میں تفسیر کے دوران، جو ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تو جو نبوت کے چار کام تھے نا اسی کا اثر اصل میں یہاں ہے۔ یعنی چلے آپ اس سوال کو کہہ دیں کہ آج ہم امت مسلمہ میں وہ رنگ کیوں نہیں دکھتا یا وہ کام کیوں نہیں دکھتے جو صحابہ کرام میں تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ طریقہ تعلیم نہیں رہا۔ تو ہم انشاءاللہ آیت 130 سے لے کر ہلکا ہلکا خلاصہ کرتے جائیں گے، پھر اینڈ میں انشاءاللہ پوری بات کو جمع کریں گے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یرغبو، اور کون ہے جو کہ یرغبو پہ چھوڑ دوں گی نا، اب آپ آیت کے اوپر اپنا نظر جمائیں، ومن یرغبو، تو جو کوئی رغبت کرے۔ رغبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کرے، اردو میں آپ کہتے ہیں میری بڑی رغبت ہے، انگلش میں کہیں گے تو انکلائنیشن۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے بڑی رغبت ہے کس چیز میں، لائک اچھا کھانے کی، کسی کو سیر کرنے کی رغبت ہوتی ہے۔ تو مرغوب کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، مرغوب، سورۃ آل عمران میں بھی ہم پڑھیں گے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، تو مرغوب بنا دی گئی انسان کے لیے۔ تو لفظ رغبہ جو ہوتا ہے نا اصل میں یہ رغبت ہی ہے، کسی چیز کو پسند کرنا۔ بٹ اگر اب اگلا لفظ ساتھ ملاؤں تو پھر دیکھیے گا، وَمَن يَرْغَبُ عَن، اور جو کوئی بے رغبتی کرے۔ اس کو سمجھیے گا، عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں اپوزٹ معنی دینے لگتے ہیں، کب؟ جب اس کا اگلا صلہ بدل جائے، پریپوزیشن۔ میں آپ کو انگلش کی مثال دے کے پھر اس پہ لے کے آتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں سائن، سائن کیا، سائن کرنا، سگنیچرز، ان کر دیں، سائن ان، اندر آنے کے وقت سائن کرنا، سائن آؤٹ، نکلتے ہوئے آؤٹ ہوتے ہوئے سائن کرنا، پٹ ان، پٹ آف، ٹیک ان، ٹیک آف، ٹھیک ہے، بس وہی چیز ہے۔ تو رغبہ کے بعد جب الہ آ جائے، یعنی اگر میں آیت جیسے پڑھ دوں اور کوئی حافظ قرآن بیچارہ غلطی سے اگر اس طرح پڑھ دے، وَمَن يَرْغَبُ إِلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اللہ من صفیح نفس، تو آپ کو تو مطلب کیا بنے گا؟ جو ابراہیم کے طریقے سے محبت کرے وہ ہے بڑا بیوقوف۔ اور سچی بات ہے، لوگوں نے یہی آج سمجھا ہوا ہے، یہ ان کو الہ کیا ہوا ہے آج، कहते मौलवी बेवकूफ, पीछे भी पढ़ा है हमने, अनोमिनु कमा अमन सुफहा, बेवकूफों की तरह हो जाए, हम कुछ स्टूपिड है। बाज लोग जब कुरान पढ़ने के बाद या कुरान की तरफ आने के बाद हर बात पे अमल करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके करीब वाले भी उनको यही कहते हैं, ये बेवकूफ हो गई हैं, ये बातों में आ गई हैं, ये जज्बाती हो गई हैं, और इनको तो पता नहीं क्या हो गया और इन पे तो कोई जादू चल गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वमई यरगबु अम मिल्लत इब्राहिम, तुम जो मर्जी कहते रहो, लेकिन बात यह है जो कोई बेरगबती करेगा इब्राहिम के तरीके से। लफ्ज मिल्लत भी इधर काबिले गौर है, पहले इसको जरा हजम कर लीजिए कि रागिबा के बाद जब इला आया जो यहां नहीं है, तो मानी क्या होगा, किसी चीज की तरफ रगबत होना, मोहब्बत होना, मिलान होना। लेकिन जब रागिबा के बाद अन आ जाए तो फिर क्या है, किसी चीज से मुतनफिर होना, किसी चीज से अपने आप को अलग कर देना। आपको बताया कि एक बड़ी मारूफ हदीस है, और एक वक्त है जब हमारे कार्ड वाकई उर्दू में छपते थे तो लोग वो हदीस का टुकड़ा जरूर लिख लेते थे, क्या, फमन रगीबा अन सुन्नति फलेसा मिन्नी, पढ़ी हुई हदीस, जो कोई मेरी सुन्नत को ना पसंद करे तो वो मुझसे में से नहीं। और फिर आगे लिखा होता था निकाह हो मिन सुन्नति, जो एक अलग हदीस है। तो बहरहाल बात समझ आ गई, अन और इला के फर्क से मानी बदल गया। यहां मुराद है कि जो कोई एराज करे, और मन से मानी कौन भी है और जो भी है, जो कोई बेरगबती करे या कौन है जो बेरगबती करे, दोनों में आप देखें तो शिद्दत है। ठीक है, किस चीज से शिद्दत करेगा, अन मिल्लत इब्राहिमा, इब्राहिम की मिल्लत से। लफ्ज मिल्लत बड़े गौर से सुनिएगा, आप लोग इसके रूट वर्ड में गलती खाएंगे, और मैं चाहूंगी कि ये रूट वर्ड जरूर दिया जाए पारे में लफ्जी तर्जमे के दौरान, क्योंकि ये उन लफ्जों में से जिस पे गलती हो जाती है। देखने में क्या लग रहा है, मीम लाम ता मिल्लत, उर्दू में भी कहते हैं मिल्लत पाकिस्तान, कायद मिल्लत लियाकत अली खान कहते हैं ना, तो यहाँ ता नहीं है, मिलल, आप देख रहे हैं लाम के ऊपर शद है, मिल्ला, मीम लाम लाम इसका रूट होता है, ता इसको अलग कर दें, बस अभी इस पे ज्यादा ना सोचें कि ये कौन सी है। मिल्लत कहते हैं लाइफस्टाइल को, तरीका जिंदगी, जीने मरने का तरीका। अल्लाह ताला कहते हैं किसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका पसंद नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल, उनका दीन, उनका जब्त हयात। इंशाल्लाह आगे थोड़ा सा जाएंगे ना तो मजहब, दीन, मिल्लत, इन सब का डिफरेंस आपको बताऊंगी, और उम्मीद है कि सूरत मायदा में इस पे बात होगी, क्योंकि उसका सारा मौजू ही शरीयत है, शरीयत कह लीजिए या लॉ पढ़ेंगे आप उसमें, लेकिन बस जहां समझे तरीका है जिंदगी। सवाल पैदा होता है कि ये बात कहकर कि कौन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से बेरगबती करे, तो सवाल हमारे जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि इब्राहिम का तरीका क्या था भाई, लाइफस्टाइल क्या था। तो इब्राहिम का वही तरीका था जो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जब इब्राहिम को रब ने आजमाया तो वो पूरे उतरे। इब्राहिम का तरीका इखलास का तरीका था, इखलास था उनके अंदर। इब्राहिम का तरीका इताअत का था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था कि जब कभी उनके रब ने उनको कहा कुछ करने को तो वो करने को तैयार है। इसी का जिक्र आगे भी आ रहा है 131 में, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम, यानी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किसी बात के करने का हुक्म दिया तो कर लिया, किसी चीज से रुकने का हुक्म दिया तो रुक गए। ठीक है, इस पे अगली आयत में बात होगी, लेकिन यहां इस आयत को पूरा करें कि इब्राहिम के तरीके से बेरगबती करने लगा ना, इल्ला मगर मन सफीह नफ्सा, बस वो वही है जिसने बेवकूफ बना लिया अपने नफ्स को। लफ्ज सफीहा जो है ना, देखिए यहां बड़े गौर से देखिएगा, ये फेल है, सफीहा, उस एक ने बेवकूफ बनाया उसको, ये मुराद है, सफीह नहीं है लफ्ज। जैसे कि आप दूसरे पारे की पहली आयत में पढ़ेंगे सयकूल सुफहाओ, तो सुफहा के सफीह की जमा, यहां सफीह नहीं है, बहुत गौर से सुनिएगा। और आप में से जिनके बेटे शादीशुदा उनको जरूर एक जुमले से मेरी बात समझ आनी चाहिए, और वो क्या कि कुछ लोग बेवकूफ होते नहीं है, पर हम कहते हैं बहू ने मेरे बेटे को बेवकूफ बना दिया, तो क्या वो बेटा बेवकूफ होता है, नहीं। बाज दफा बड़े अकलमंद लोग औरतों के आगे बेवकूफ हो जाते हैं ना, बाज कहती हैं मेरी सास के आगे जाके मेरे मियाँ बेवकूफ बन जाते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं। तो सफी खां में क्या, खुद बेवकूफ नहीं था, खुद को बनाया। बात वाजे हुई, एक है सफीह, वो है ही कम अकल, पैदाइशी उसके अंदर कोई कमी है, आईक्यू लेवल उसका बहुत लो है, उसको पता ही नहीं अच्छे बुरे का, लेकिन यहां क्या है कि इल्ला मन सफी का नफ्सो, वो है जिसने खुद को खुद बेवकूफ बनाया, जिसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी डाली, जिसने खुद अपना नुकसान खुद किया। हालांकि वलकद और अलबत्ता तहकीक, वाह और लकद तहकीक, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस इब्राहिम के तरीके पे अमल करने को कोई बेवकूफी करार देता है तो वो इब्राहिम क्या थे, इस तफई ना हो, उसको चुन लिया उसने। इस तफई ना का लफ्ज है ना स्वात फा वो सफू, सफिया नाम भी इसी से। सफाई की है कभी आप कहेंगे और करते क्या? सफाई क्या होती है? चुनना। आप सफाई के दौरान क्या कर रहे होते हैं? खराब चीजों को हटाते जाते हैं, कचरा उठा लिया, ट्रैश निकाल दिया, बाकी चीजों को सही रखा। अब इसमें तोये रूट की नहीं है, स्वात फा वो सफो, सफा मरवा जो आप सुनते हैं वो भी वही लफ्ज है। यहाँ तोये जो है ना, ये अरबी जुबान का एक असलूब है। जैसे पीछे आपको भी बताया था 2-3 सबक पहले, फमनेस्तुर्रा, तो तोये उसमें रूट की नहीं थी। इसी तरह से यहाँ तोये रूट की नहीं है, ये बस एक शिद्दत के लिए आती है, इतना अभी समझ लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बेशक उसको चुन लिया था, फिर दुनिया दुनिया में, वह इन्नहु फिल आखिरती, और आखिरत में तो वो क्या होंगे, लमीन सालेहीन, वो तो बहुत सालेहीन में से होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि मैंने उनको दुनिया में चुन लिया। कैसे चुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? अबुल अंबिया, नबियों के बाप। फिर इसी तरह सैयदुल अंबिया, नबियों के सरदार। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे चुना? अपने रास्ते में कुर्बानियां करने के लिए चुना, हिजरतें करने के लिए चुना। कल के जो सबक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का सुना है, उसको आंखों के सामने ला के सोचें कि आज के दौर की शख्सियत होते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो कोई हम में से कह सकता था कि चुने हुए हैं? वो तो धक्के खाए हुए थे। बाप कह लार जुमन ना कर, मैं तो तुझे रजम कर दूंगा, पत्थर मारूंगा। सूरह मरियम में पढ़ेंगे, या कहते वाह जुर निमुली, या पीछे हो जाए, यानी अगर मैं जुबान खराब होने का डर ना हो तो मैं आपको इसका तर्जमा बताऊं कि दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से, दूर चला जाए, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। थोड़े दिन गुजरते हैं तो कौम उनके लिए आग के अलाव तैयार कर लेती है। हिजरत कर रहे होते हैं तो बादशाह बीवी को रोक लेता कि तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इनकी बीवी को, दर दर की ठोकरें खाते हुए। याद रखिए, चुने हुए लोग अक्सर ऐसी ही जिंदगियां गुजारते हैं, मुआशरे के ठुकराए हुए लोग होते हैं, रिजेक्टेड थर्ड क्लास लोग। इनको ना बुलाना अपनी शादियों में, रंग में भंग डालेंगे। इनसे जरा दूर की सलाम दुआ बहुत ठीक होती है, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। यहां देखिए कि अल्लाह ताला की इस जुमले से लग नहीं रहा हैरत, अफसोस, ताज्जुब। ये जो लफ्ज ना, वही अरगबू मिल्लत, अल्लाह करे अफसोस है तुम्हारे हाल पे, अकल दी, समझ दी, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने अकल को इस्तेमाल नहीं किया और बेवकूफ बनते जा रहे हो, और तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को ठुकरा दिया। यहूद साफ कहते थे अल्लाह की बात तो मानो, लेकिन हर बात तो नहीं मान सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, अगली आयत को साथ जोड़ लीजिए, इस काल लहु रब्बुहु, जब कहा उससे उसके रब ने, क्या कहा? अस्लिम, मुसलमान हो जा, मती हो जा। काल अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, कहने लगे अल्लाह ताला जी मैं मती हो गया। ना सवाल पूछा क्यों, ना हिकमत मालूम की कि क्या होगा इस हुक्म पे अमल करके, ना खुद पे तरस खाया हाय ये भी करूं, ना मुआशरे का रद्द अमल देखा, इधर उधर नहीं देखा, इफ्स और बट्स में नहीं पड़े, ना अपसेट हुए, क्या मुश्किल है पांव पटकते हुए, क्या करूं अब, सारी दुनिया ये कर रही है तो मैं कैसे इसके बगैर जीऊं, मौलवियों ने जिंदगी मुश्किल कर दी, मुसलमान ही ना होता तो अच्छा था, कुछ नहीं कहा। देखिए इसके बाद काल लहु रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तो लिरब्बि, बीच में कोई सेकंड थॉट भी नहीं है। अरबी जुबान में आपको कहता है कि वाव आता है या सुम्मा आता है या फा आता है, तीन लफ्ज लिखे, वाव, सुम्मा और फा, इन तीन से पता चलता है कि जो बात हुई थी ना उसके और जो बात उससे अगली हो उसमें कुछ फर्क है। जैसे आपको पता है ना, फा से फौरन, लेकिन फिर भी है कुछ। सुम्मा ये मसा करी शायद को मैं आपके सामने यूं पढ़ूं, जरा आयत पे देखिएगा, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम सुम्मा काल अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, तो ये टोम पता क्या, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा ये करो, फिर बड़ी मुश्किल से सोच के बोले अच्छा कर लेता हूं। आपको अपने बच्चों की टोन याद आ गई होगी, پھر خیر اٹھ ہی پڑتے ہیں کہ اب نہ اٹھے تو ماں نے پھر چیخنا ہے. یہ نہیں کیا. اچھا یہ ہوتا اس قال لہ ربہ اسلم فقال اسلمت. اب سیکنڈ تھاٹ یہ بھی ہو سکتی ہے جب ان کو ان کے رب نے کہا مسلم بن جا فقال اسلمت, تو یہ بھی ہو سکتی تھی ایک ترکیب. اس کا مطلب کیا تھا کہ جب ان کے رب نے ان کو کہا پھر انہوں نے سوچا اور فوراً کر لیا. ٹھیک ہے, اب ذرا تیسری ترکیب لکھیے. اس قال لہ ربہ اسلم, جب ان کے رب نے ان کو کہا وقال اسلم, تو وہ ڈال دیں تو پھر معنی کیا تھا, جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلام لے آؤ میرے سپرد کر دو میرے حوالے کر دو اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں. اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ واؤ نہ فا نہ سما. کیا بتایا جا رہا ہے کہ رب کے حکم کے آنے اور آپ کے ماننے میں کوئی فرق ہی نہیں تھا. انگلش میں آپ کہتے ہیں ٹچ سسٹم, ٹچ کرنے کا بھی وقت نہیں تھا. جس کو آج کی زبان میں آپ ایک لفظ بولتے ہیں انسٹنٹ اسپونٹینیسلی فوراً کے فوراً, جس طرح آپ وہ کہہ سکتے ہیں نا, بہت سارے انگلش کے لفظ ان میں آتے ہیں لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو کہوں, نہ سوچا نہ سمجھا نہ مشورہ کیا نہ استخارہ کیا نہ سوسائٹی کا رد عمل چیک کیا, ذرا ٹیمپریچر تو چیک کروں اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے بیوقوف تو نہیں کہیں گے. اور آپ وہ ساری باتیں سوچیں نا, جوانی میں معاشرے سے اپوزٹ ہیں, برادری والے کہہ رہے ہیں چلو ہمارے ساتھ ایک رسم طے کرنے چل رہے ہیں ہم لوگ ایک بت کی پوجا میں, چل پڑتے, سوچتے نہیں کیا تھا پھر میں اکیلا ہوں, باپ بھی میرا مشرک ہے اور وہ تو بادشاہ کے دربار کے اندر بہت بڑے عہدے پہ ایک وزیر بھی ہے, تو لوگ کہیں کہ وزیر کا بیٹا ہمارے ساتھ اس یاترا کے لیے نہیں گیا پھر تو بہت مشکل ہوگا. دیکھیے ایک جملہ لکھ لیں, سوچی پہ آتے بندہ گیا, سیکنڈ تھاٹ آتی ہے نا تو اس کا جواب نو ہوتا ہے. صبح اٹھ کے آپ نے یہاں آنا تھا نا, اگر آپ نے صبح اٹھ کے اپنا حال دیکھا باہر کا ٹیمپریچر اپنے ٹیلی فون پہ دیکھا اور اپنی نبض چیک کی اور گھر کی حالت دیکھی اور شام کو آنے والے مہمانوں کا سوچا تو آپ یہاں نہ ہوتے. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں ایسی باتوں پہ, ابھی یہاں بھی ذہن میں آ گیا, لکھ لیں جم بنا دیں اس لیسن کا, اللہ کے حکم پہ عمل کرنا بڑے بہادر لوگوں کا کام ہے, کرجیس بریو کم حوصلے والے, بزدل لوگوں سے ڈرنے والے, معاشرے سے ڈرنے والے لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے, ماننا چاہتے بہت ہیں. آج آپ کو دنیا میں جتنے مسلمان دکھ رہے ہیں نا, اس سے بہت سارے وہ ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں. جتنے لوگ اس وقت آپ کو حرام سے بچتے ہوئے دکھ رہے ہیں نا, اس سے کئی گنا زیادہ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں. جتنے لوگ آپ کو عبادات کرتے نیکیوں کے لیے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں پیش کرتے دکھ رہے ہیں نا, اس سے کئی گنا زیادہ موجود ہیں جو کرنا چاہتے ہیں پر کر کیوں نہیں رہے. سوچ لکھیں, اس سوچ کو پکڑ کے کاٹیں, ٹک کر دیں. پیچھے ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ کیا ہے, وہ یزکیہم, تزکیہ کیا آپ نے امت کا. بدو تھے, عربی تھے, جاہل تھے, گنوار تھے, کوئی پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ نہیں تھے مکہ کے. بکریاں چراتے تھے, اونٹوں کے باڑوں میں رہتے تھے, ان کا دودھ دھوتے تھے, کائنات میں کھیلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تزکیہ فرما دیا, سب سے پہلے جس چیز کا تزکیہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے نا اس قال لہ ربہ اسلم پہ عمل کرتے ہوئے, تو پہلی چیز ہے سوچ کا تزکیہ, پیوریفائی یور تھاٹس. آج آپ میں بھی یہ چاہتے ہیں, سچی بتاؤں, اگر آپ یہ آیت دیکھیں نا آپ کہتے ہیں ہائے ابراہیم کا باپ کتنا خوش قسمت تھا, اس کا بیٹا اللہ کی بات فوراً مان جاتا تھا, ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی تو وہ فوراً جائے نماز پہ کھڑا ہوتا تھا, ہائے ابراہیم کا باپ کتنا خوش قسمت تھا. تو بھائی نہیں, ابراہیم کے باپ کو نہ دیکھے ورنہ پھر آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنے بچوں سے وہ چاہتے ہیں جو نبیوں نے کیا, لیکن ہم اپنے سے وہ نہیں چاہتے. ہم یہ کہ ابراہیم کتنے خوش قسمت تھے, نہ گرمی کا ان پہ اثر ہوتا تھا, نہ سردی کا اثر ہوتا تھا, نہ خوشی کا اثر ہوتا تھا, نہ غم کا اثر ہوتا تھا, پتھر تھے. غم کی خبر سن کے بھی چل پڑے, جانا تو ہے. खुशी ने भी कदम ना रोके। अकेले होते थे फिर भी उठ के आ जाते थे, 10 लोगों में घिरे होते थे कहते तुम बैठो मैं आती हूँ। ये थे इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो रब्बिल आलमीन। ऐसे लगता है बोनलेस मीट, फ्लैश, मैरिनेटेड मीट, ना मर्जी ना अकल इस्तेमाल की, ना जज्बात देखे, ना ये कहा लोग माइंड करेंगे। हम तो मुआशरे की नब्जें देखते देखते अपनी नब्ज अल्लाह के हाथ में दे देते हैं। मुझे यहाँ फिर बात याद आ गई, इमाम गजाली की एक मिसाल है, कहते हैं बंदगी तो ये है कि बंदा अपना आप अल्लाह के हाथ में ऐसे दे दे जैसे मरने वाला नहलाने वाले के हाथ में खुद को देता है। यह है इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो रब्बिल आलमीन। इधर मोड़ो, टांगे मोड़ो, इधर करो, झुकाओ, चूड़ियां काटो, कपड़े फाड़ो, पेट दबाओ, कुछ नहीं आगे से रिएक्शन। कब हम भी इस तरह अस्लिम होंगे? 100 साल की उम्र में भी उतने ही मुस्लिम थे 8 साल की उम्र में जितने थे। बचपन की खूब अड़ी हुई थी अल्लाह की बात मानने की। कल खुद आग में गिराए गए तो भी मुस्लिम, और आज बेटे की गर्दन पे छुरी चलानी पड़ी तो भी मुस्लिम। लग नहीं रहा कोरे? जरा सा आप आज के बड़े मुखलिस मुआशरे के जुमले तो सुनिए हजरत इब्राहिम के बारे में, खून सफेद हो गया इनका। ये तफरके डाल रहे हैं घरों में, खानदानों को तोड़ रहे हैं। लो इतनी खुशी का मौका है तो अब ये उठ के चल पड़े नमाज पढ़ने मस्जिद में। मौलवी साहब घर में ना पढ़ सकते थे? लोग 10 मेहमान आए हैं, अब उनको छोड़कर ये कहते हैं जी आप बैठे मैं जा रहा हूं। ये तो बड़ी बेइज्जती कर दी इन्होंने अपने मेहमानों की। देखो ना शादी है, हमने रखा हुआ नमाज का इंतजाम किया हुआ है, इधर पढ़ा लेते मौलवी साहब, जरूर मुसीबत डाल दी हमें, जाओ जी मुझे मस्जिद लेके आओ, छोड़ के आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। क्या था, खुशी का मौका था, 4 बैंड बाजे बज गए तो इतने जलते हैं, ये खुशियों से खुश ही नहीं होते। बस स्टूपिड, क्या आपको आज लोगों के कमेंट ऐसे नहीं दिख रहे उनके बारे में, जबकि अल्लाह कह रहे हैं वलकद इस्तफईना हो। याद रखिएगा किसी के ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह उसको अपने लिए चुन ले, उसको बहरा बना दे लोगों की बातों से, उसकी अकल को डेफ कर दे अपने फायदे और नुकसान के सोचने से, उसकी आंखें अंधी हो जाएं अपने लोगों के चेहरों की खुशी ना खुशी को देखने से। मस्त मलंग, सीधा अल्लाह की तरफ चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। जब किसी से मोहब्बत होती है ना तो बंदे को ना माँ बाप की परवाह रहती है, ना अपने खानदान की इज्जत का ख्याल होता है। वो कहते जो मर्जी कर लो, मेरा दिल जुड़ गया है। वो शराबी होगा मुझे अच्छा लगता है वो कबाबी मुझे अच्छा लगता है वो मुशरिक मुझे अच्छा लगता है उसके अंदर 10 खराबियां मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि मैंने चुन लिया है। मोहब्बत की मेराज मती और फरमा बरदार होना, बंदा अपना आप सब कुछ दे दे, खुद सुपुर्दगी की कैफियत है कि इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो रब्बिल आलमीन। और डिक्शनरी खोल के देखेंगे ना तो लफ्ज मुस्लिम का यही मानी है कि ऊंट को उसका मालिक जो कहे ऊंट करने को तैयार हो जाए, चारा डाल दे तो एक्स्ट्रा भी खा ले, 8 दिन तक पानी भी ना दे तो चलता ही रहे, उठाओ उठ जाओ उठ गया, कोई मर्जी नहीं, सुस्ती का मारा नहीं, बिठाओ बैठ जाओ, हफ्तों चलाता रहे वो चलता ही जाता है, थकता ही नहीं है, और 2 दिन के लिए एक जगह बिठा दे तो उठता ही नहीं है। ये है मुस्लिम। आप और मैं भी तो मुस्लिम है, हमारा भी तो नाम मुस्लिम है, मजहब के खाने में हमारे भी बर्थ सर्टिफिकेट पे मुस्लिम लिखा हुआ है, हमारे भी पासपोर्ट्स पे मुस्लिम लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन क्या वाकई हम लोग मुस्लिम बनते? हर एक अपने ऊपर लेकर सोचे इसको, क्या हकीकत में हमारे बारे में भी अल्लाह सुब्हान तआला ने इसी की बात की? और नोट कीजिए कि लफ्ज मुस्लिम है, पीछे वाला मैंने कहा था सबक में बात आई थी फिरका वारियत की, इब्राहिम क्या थे? मुस्लिम। क्या थे? सुन्नी थे, शिया थे, हनफी थे, क्या थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? قال اسلمت لرب العالمين। और हर नबी मुस्लिम था। हजरत यूसुफ की तो अपनी दुआ है कि तवफ्फनी मुस्लिम वल्हिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मुझे इस्लाम की हालत में मारना और नेकों का दर्जा देना। तो क्या पता चला कि मुस्लिम बन के बंदा जिए तो बात बनती है, और दुनिया में तो उनकी औलाद में नबूवत कायम की, ये भी उनका दुनिया का चुनाव था। ये सारे जिसको आज मैं और अब कुरान की क्लास में बैठ के एहसान और इस्तफा कह रहे हैं ना, इसी से लफ्ज़ मुस्तफ़ा भी है जो नबी सल्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मोहम्मद, मुस्तफ़ा, मुजतबा, मुस्तफ़ा ये और मुजतबा जबी से वो भी आगे आएगा। लेकिन दुनिया ऐसे लफ्ज़ों पर आपको चुनावा नहीं कहेगी। जिसने दुनिया को देखना है वो यहीं से पलट जाए, वो यहीं से पलट जाए जिसे जान हो प्यारी, अभी से चला जाए। वजह कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कुर्बानियों का रास्ता, हिजरतों का रास्ता, नफ्स पे काबू का रास्ता। किसी ने कहा कि जन्नत कितनी दूर है, उसने कहा दो कदम। पहला कदम अपने नफ्स पे रख दो तो दूसरा कदम जन्नत में होगा। हम कहते नहीं पहले सारे खुश हो ले मुझसे, मुझे सर्टिफिकेट मेरे खानदान से मिल जाए ना कि अब तुम ये काम कर सकती हो, तुम बहुत अच्छी बहू बन गई हो, अब जाओ तुम अपनी आखिरत संवार लो, आज ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। और मैं सोचती हूँ ये जो ये असलम तू की कैफियत जिंदगी भर ना आए ना, मलकुल मौत को देखकर हो जाती है। मलकुल मौत को देखकर बंदा मुस्लिम हो जाता है। रिसेंटली आपको बताया कि हमारे घर में बड़ी करीबी डेथ हुई, तो कल मेरी पहली दफ़ा बात हुई उनके घर वालों में से जो पास थे उस वक्त। तो मैंने कहा क्या हुआ ना, तो मेरी दूसरी मोमानी भी थी तो वो बता रही थी, कह रही कि आज तक ये लफ्ज़ सुना है हमने कि जिंदगी बुलबुला है। सुनते हैं ना हम लोग, कहती हैं अब मैं कह सकती हूँ कि बुलबुला भी बहुत बड़ी चीज़ है। 2-3 मिनट पहले भी हमें नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है इनके साथ, तसव्वुर में भी नहीं था कि ये इनकी जान जा रही है। गोता तो कई दफ़ा लगता है, गले में दर्द हो तो गोता तो खांसी में लग ही जाता है, बस गोता लगा और सांस रुक गया और हमें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। कहती बुलबुला बहुत बड़ी चीज है, इतनी जल्दी किसी ने जान दे दी है ये हम मैंने अपनी इतनी जिंदगी में पहली दफा देखा है। हर बंदे के मुंह पे ये है कि यकीन नहीं आता, तसव्वुर कैसे आए। बनी चीज पहले बिगड़ती है, फिर टेढ़ी होती है, फिर कहीं जाके टूटती है। तो वो तो ऐसे जैसे फ्रेजल न्यू चीज ली और टूट गई। तो उस वक्त तो कोई ना कुछ कर सका। जब मेरी आपकी मौत का वक्त आएगा कहेंगे अल्लाह थोड़ी देर ठहर जाओ ना, 5 मिनट सिर्फ प्लीज, मलकुल मौत आती हूँ अभी। आज हम कितना डिले करते हैं, नमाजों को ही देख लें, उसी से हमारे सारे पोल खुल जाएंगे। घर जाके पढ़ेंगे, भाई पहुंचोगे घर तुम? और आजकल तो नमाजें इतनी छोटी हो गई हैं टाइम कि आप जरा सा डिले कर दें जोहर को तो साथ ही असर का वक्त आने लगता है, अभी तो आगे आना है वक्त। आदत बनाए, ये जो असलिम वाली कैफियत है ना, ये फजर के उठने से लेकर 5 नमाजों पे अपने ऊपर लानी है। और यही बच्चों को मैसेज दें, नमाज हो जाए शुरू तो ऐसे बेचैन हो जाओ जैसे वॉशरूम में जाना हो ना तो बंदा बेचैन होता है। कभी बच्चे हिलते हैं, उठते हैं, झूलते हैं, माँ समझ जाती है इसको वॉशरूम में जाना है। नमाज के वक्त ऐसी कैफियत आ जाए, कुरान क्लास का वक्त है, चैन ही नहीं पड़ा, बेहोश हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मैं अपनी जगह पे ना पहुंची, मैं तबाह हो जाऊंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैंने अपने से जो वादे किए मैं टूट जाऊंगी। यानी ये आदतें जिंदगी भर की होती हैं, फिर मौत के वक्त पे जान दी जाती है। सुभान अल्लाह। और ऐसे लगता है इब्राहिम तो तैयार थे अल्लाह के आगे जान देने को, और ये बड़े बड़े इम्तिहान सिर्फ वही दे सकते हैं जो छोटे इम्तिहानों में पास हो चुके हों। मास्टर्स का पेपर वही हल करेगा जो पीछे FSC, BSc या FA, BA और मैट्रिक कर चुका होता है। 2 साल के बच्चे को आप मास्टर्स का पेपर दें वो बेहोश हो जाएगा क्लासरूम में बैठा बैठा। तो मेरी आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी नेकियां अल्लाह तब लेगा मुझसे जब छोटी छोटी नेकियां करने के लिए मैं तैयार हो चुकी होंगी। अमूमन देखिए बहुत छोटी उम्र में इम्तिहान मुश्किल लगते हैं, बच्चे होते हैं हम जब, या बहुत बड़ी उम्र में। मसलन जैसे आप देखिए कि हमारी इस क्लास में कोई बुजुर्ग खवातीन हो 70s 80s में, तो कहती हैं हम टेस्ट नहीं दे सकते, लिखना भूल गया और हाथों में ये पड़ गया, वो हो गया, दिस एंड दैट। मानते हैं, बहुत छोटे भी लोग होते हैं वो भी नहीं फोकस करते, बीच की उम्र वाले लोग हैं जो करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानों को जरा एक और एंगल से देखिए, बचपन से लेकर इम्तिहान पड़े इनके ऊपर और खुद अपने बुढ़ापे तक वो इम्तिहान कायम रहे। छोटी बात तो नहीं ना कि बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना। तो ये कौन कर पाता है? यूजर फ्रेंडली। लिखें हजरत इब्राहिम यूजर फ्रेंडली थे अल्लाह के हुक्म के साथ। आप जो चीज रोज यूज करते हैं ना आपको मुश्किल नहीं लगती, जो किचन में काम के दौरान हमारी मुख्तलिफ मशीनें होती हैं, बहुत इजी होती है। अंधेरे में भी जाके माइक्रोवेव का बटन उल्टा नहीं घुमाते, हम क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। यूजर फ्रेंडली है। कोई नई चीज ले आए, कभी कभार नीचे से निकालें तो 10 दफा सोचते हैं, अच्छा ये बटन कौन सा था, ये चलाना, इस सेटिंग पे क्या है कि नहीं। ऐसे अल्लाह के हुक्म के यूजर फ्रेंडली थे, ये भी जहन बना दें। अल्लाह का हुक्म मानकर सोच में पड़ जाना ये खुद को खतरे में डालना है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा बना दे, यही मेराज है मोमिन की। और आप देखिए, हम दुआ नहीं करते कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाब अन्नार, कि अल्लाह हमें इस दुनिया में भी अच्छा दे और आखिरत में भी अच्छा दे। और इसी तरह से आप देखिए कि मैं और आप अगर अपने आप को इस तरह अल्लाह के आगे झुका दें तो क्या हमारा हिसाब मुश्किल होगा? दुनिया में आपका हिसाब फौरन तैयार है। और ये जो लफ्ज़ मेरे आपके लिए ना, यरगब रगीबा, इसके अंदर एक और एंगल देखिएगा, आखिरी एंगल है, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। चाहने और ख्वाहिश करने की बात होती है, चाहना, ख्वाहिश करना, मोहब्बत करना, ठीक है? और रगीबा के बाद फी आ जाए या इला आ जाए तो मोहब्बत करना और किसी की तरफ माइल होना। रगीबा फी कहते हैं चाहना और ख्वाहिश करना, और रगीबान हो उसकी तरफ से मुंह फेर लेना, उसको नापसंद किया, उसको छोड़ दिया, यानी ख्वाहिशों की बात है। अपनी ख्वाहिशों को हम छोड़ दें, बाकी बातें पीछे रह जाती हैं, फिर एक इंसान पीछे होता है। फिर ये जो सफ़ेहा यसफ़हु सफ़हन की बात है ना, तो ये किस लिए आता है? उसने अपना नसीब बिगाड़ लिया। ये जो सफ़ेहाहु का लफ्ज़ है ना, इसको लिखें, उसने अपना नसीब बिगाड़ लिया। अरबी में कहते हैं सफीहा रायहू, उसने गलत राय कायम की। तो यहां क्या है, सफीहा नफसहू, तो मानी क्या हुए, इसने अपने आप को हमाकत में डाल दिया। और आप देखिए कि कुराने पाक में लफ सफाहत यानी बेवकूफ बनना दुनिया के मामले में भी आया है और आखरत के। सूरत निसा में आप पढ़ेंगे, वला तू तु सुफहाउम वालकुम, के बेवकूफ लोग जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माल ना दे दिया करो फौरन, यानी यतीम अभी छोटे हैं तो उनको पैसे दे दोगे तो वो तो जाया कर देंगे। वो कौन सा मामला है, दुनियावी सफाहत का। इसी तरह सूरत जिन में हम पढ़ेंगे, वन्नहु काना यकूलु सफीहुन अलल्लाहि शतता, जिन्नात एक दूसरे के बारे में कहते हैं हम में से कुछ बेवकूफ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्या पता चला कि सफाहत के दर्जे होते हैं, छोटे काम से लेके बड़े काम तक। लफ्ज़ नफ्स भी आपने पीछे भी पढ़ा है, यहां भी आ रहे हैं। मसलन नफ्सहू के अरबी कलाम में कई मानी है, मसलन अजमत, अब ये लिखिए तो आपको फिर इसमें से एक नया मानी दिखेगा, हिम्मत, इज्जत, इरादा, राय, ऐब, रूह, नफ्स। हम तो रूह और नफ्स के सिर्फ सोचते हैं ना, लेकिन मैं आपको ये डिफरेंट लफ्ज दिखा रही हूं। नफ्स से मुराद अगर रूह हो तो मानस होता है, कहा जाता है खराजत नफ्सहु। और शख्स से मुराद लें तो मुजक्कर होता है, खमसा ताशरा नफसन। इसी तरह नफीसा नफसन नफासतन बुखल को कहा जाता है, नफस बिशयिन, उसने बुखल किया किसी चीज के साथ। नफस अला फलानिन, हसद करना। अच्छा एक टर्म आपने सुनी है कभी, नफास, वो क्या होती है? हैज और नफास, 40 डेज, जिसको हमारे कल्चर में मोमन कहते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, वो भी ये लफ्ज़ है। नफिसतिल मरअतु, औरत का बच्चे को जन्ना, ठीक है, मनफूस होगा तो उसकी सिफत होगी। तो बहरहाल ये तो खेल है बहुत मुश्किल। नफस बन जाए ना जब फा पे शद के साथ, नफस तनफीस, तो मुश्किलात को दूर करना, दफाए मुश्किलात। नफस अनहुल कर्ब, गम को दूर कर दिया उसने, मोहलत देना। इसी तरह इस लफ्ज़ मुनाफसा भी है, मुश्किल है मुझे पता है आपके लिए, लेकिन कोई तो लिख लेगा ना, वाहम एक दूसरे पर फख्र करना, मुकाबला करना। और अगर अल्लाह की तरफ ये नस्बत हो ना, यानी नफ्स की नस्बत अल्लाह की तरफ हो, तो इससे खुद अल्लाह की ज़ात मुराद है। इंशाल्लाह सूरत आले इमरान में 2 जगह आप पढ़ेंगे, एक ही आयत के थोड़े फर्क से आगे पीछे, व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है। अल्लाह ताला आपको मुझे आसान कर दे। اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکوانا. اور یہ جو استفائی ناحو ہے, صفا یسفو سے بتا دیا آپ کو, اس میں محبت میں خلوص پیدا کرنا بھی ہوتا ہے. مخلص دوست کہتے ہیں صفوہ کو, پسندیدہ برگزیدہ. صفوان کہتے ہیں چکنی مٹی کو. آگے پڑھیں گے تیسرے پارے میں صفوان. اب آپ اور میں اپنے اوپر لے کر اگلی آیت کو لیتے ہیں.